Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Nikhil Kumar Shukla.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। आप दोनों के साथ साथ सभी सुनने वालों का नमस्कार।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा।
Thank you, Nikhil. Yes, friends, let's begin with the headlines. Benchmark domestic indices end nearly flat with positive bias. Sensex closes above 78,000. Nifty ends at 23,669. Lok Sabha passes the Finance Bill 2025. Finance Minister Nirmala Sitharaman says bill provides tax relief to honor taxpayers and aims to enhance ease of doing business. And global crude oil prices register uptick. Brent crude trades at $73.54 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक हरे निशान के साथ सपाट रहते हुए बंद हुए। सेंसेक्स 78,000 के स्तर के पार पहुंचा और निफ्टी 23,669 पर बंद हुआ। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा विधेयक से ईमानदार करदाताओं को राहत और इसका उद्देश्य कारोबार में सुगमता बढ़ाना। और वैश्विक तेल बाजार में उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $73.54 प्रति बैरल। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। घरेलू शेयर बाजार के आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार में लगभग स्थिरता देखी गई, लेकिन लगातार सातवें सत्र में दोनों सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 33 अंक की बढ़त के साथ 78,017 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक के मामूली उछाल के साथ 23,669 के स्तर पर पहुंच गया। बीएससी के विस्तृत बाजार में सूचकांक मुनाफा वसूली के बीच भारी गिरावट के साथ बंद हुए। मिडकैप सूचकांक 1.1% लुढ़क गया, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 1.6% से अधिक की गिरावट आई। सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज लाल निशान के साथ बंद हुए। वहीं एनएससी में 30 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 96 अपने निचले स्तर पर रहीं।
ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द स्टॉक्स इन डिटेल नाउ। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड नियरली फ्लैट इन अ वोलेटाइल ट्रेड टुडे, बट मैनेज्ड टू सेटल इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर द 7th कंसेक्यूटिव सेशन। द 30 शेयर इंडेक्स एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स रोज मार्जिनली बाय 33 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,017. The National Stock Exchange Nifty 50 added 10 points to settle at 23,669. The broader market indices at the BSE closed with deep cuts amid profit booking. The mid-cap index fell over 1.1% and the small-cap index lost over 1.6%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, Zomato plunged almost 5.8%, Indus In Bank slipped over 4.7% and Adani Ports lost over 1.4%. Conversely, among the top gainers, Ultratech Cement rose over 3.4%, Bajaj Financial Services increased over 2.7% and Infosys gained almost 2.5%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors logged losses. Among the top laggards, consumer durables fell almost 1.9%, realty slipped 1.5%, and energy lost over 1.4%. In the top gainers, focused IT rose almost 1.4%, information technology added over 1.1%, and tech added nearly 1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,983 companies declined, 1,085 advanced and 109 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 30 companies hit their 52-week high while 96 hit their 52-week low. So Siddharth, when we talk about Sensex crossing 78,000, for a long time it was hovering around 74,000, but we have seen it go beyond 82, 83, around 84,000. Comparisons are odious, but well, this is market mantra. And even if we say the markets ended nearly flat from yesterday, we still say, how come? Why? And how would you attribute all these reasons? How would you analyze all this? Because also come to think of it, when it was 74,000, we said, despite FIIs pulling out, despite all this, it's the domestic investors which are making the market robust. What else do you attribute all this great show to?
See, Lalima, at least the last five, six sessions, we should say the markets have been in the green. So positivity has returned to the Indian markets. And I believe if we would look, the March should be the best for Indian markets in terms of, even if we look at globally, all around. So if you compare it with any other markets, I think Indian markets would be the best performing market. And also the other positive, or I would say, see, if you look at if you go back and see how it's all started, more so especially the last financial year, the current financial year, we lost about 3-4 months in elections, and then the new government took over, and then in October this flight of FII started, which led to this fall in the Indian markets, which precipitated this fall. Till they still continue to be sellers, net sellers. And I think last two sessions, yes, they have started again coming back to Indian markets, which is again a positive sign for us.
Yes.
And otherwise, if you look at especially the first two quarters, obviously there was slowdown in Indian economy, especially due to elections. The third quarter, again, the GDP bounced back, and it is expected to now further go up in the fourth quarter. GDP is going to be even robust, better than what we've seen in the third quarter. So all in all, in terms of Indian economy, macroeconomic fundamentals, everything is, our macroeconomic fundamental, there's nothing to worry in, especially if you look at big indicators like inflation, fiscal deficit. So everything is under control. In fact, inflation has further moderated, which obviously should, I think, trigger another rate cut from RBI, another positive for the markets also. So, and even the tight liquidity situation which we were facing in last 2 months, I think for that also RBI was very active in the market. So that also, that situation has now almost kind of normalized.
What is the effect of 20th January 2025? President Trump 2.0 is different from President 1.0.
Yeah, that also was one reason, obviously, which also created uncertainty in the market, jitter in the market, I would say. But I think by and large, the markets have also kind of factored in that, because, and also we should say that the kind of relation India has with US, or the or Prime Minister Modi, his own individual chemistry with Donald Trump, also, I think, is a very important factor when we look at India-US, especially this trade issue. And if you look at the first round of casualty, India was nowhere there. If you look at the first tariffs that were imposed was China, Mexico and Canada. So India, still we have that April 2 is the deadline for us, where he's said that he would. But there are also indications we are actively engaged with US on this trade issue, and the US delegation is coming to India tonight, I think. And we are having a 3-day from tomorrow starting trade talks, with bilateral trade talks. And even today, the government of India has reiterated that we are engaged with US. We look forward to, you know, cutting our tariffs and giving more market access, plus also reducing the non-tariff barriers between the two nations. So I think there is positivity on both sides, and I'm very, very confident that we will reach an agreement which would be beneficial to us also, and would also foster trade between the two countries.
और सिद्धार्थ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में लगातार तेजी का सिलसिला है, और कल की अगर हम बात करें, कल तूफानी तेजी हमें देखने को मिली, जो अभी बीते दौर में हमने नहीं देखी थी, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि सेंसेक्स ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन इस बीच में आज की अगर हम बात करें तो छोटे और मझोले जो शेयर्स हैं उनमें काफी जोरदार गिरावट देखने को मिली, खासतौर पर बीएससी के मिड कैप इंडेक्स की हम बात करें तो 1.13%, और फिर स्मॉल कैप इंडेक्स इंडेक्स की बात करते हैं 1.63%, ये टूट करके बंद हुए, तो इस सिलसिले को आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए निखिल, अभी जब जिस हम मार्केट जिस फेज से गुजर रहा है, मुझे लगता है आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस तरह के ट्रेंड्स। और दूसरा जो आपने बोला है, जो तूफानी तेज़ी, कहीं ना कहीं लोगों का एक जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन भी होता है ना, कि बहुत दिन से बाजार लगातार 5-6 महीने से एक निगेटिविटी बनी हुई थी, तो जहां भी थोड़ा सा लोगों को एक पॉजिटिव फैक्टर दिखा, तो दैट वॉज द रीज़न आई वुड से कि एक पेंट अप डिमांड थी, एक बिल्ट इन डिमांड थी, लोग उस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, वो या वो एक उस तरह का क्यू ढूंढ रहे थे या अपॉर्चुनिटी देख रहे थे जो उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहा था कि वो बाजार में आए और निवेश करें। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा ये जो आपने बोला स्मॉल कैप और मिड कैप, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल या 4 साल कोविड के बाद, उनकी जो स्टोरी वो मिड कैप और स्मॉल कैप की ही स्टोरी रही है। तो कई बार क्या होता है, ईच टाइम सेंसेक्स करेक्ट तो स्टोरी चेंजेस ऑल्सो। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि बट रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे जो लगता है कि शायद उतनी तेजी से ना आए, थोड़ा टाइम लगेगा, या कुछ कुछ ही स्टॉक्स होंगे जिनमें जो एक्चुअली जिनमें आपको दिखेगा कि जो है ब्रॉडली जो है खरीदारी दिखेगी, बट टू से दैट ऑल राउंड रैली रहेगी, मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम है उसमें।
इसमें एक चीज और है जो इंट्राडे लोग निवेश करते हैं, खासतौर पर बड़ी कंपनियों ने आज लोगों को काफी निराश किया, तो अभी क्या लगता है कि उन्हें किस तरह की अप्रोच रखने की सलाह आप देंगे?
नहीं निखिल, देखिए हम मेरा तो हमेशा से मानना है मार्केट, जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम के पहले भी बात कर रहे थे कि आप अपना रिसर्च करिए बढ़िया से, अच्छी कंपनीज में पैसा लगाइए, अगर आपको अपने जानकारी है आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें। आजकल बहुत सारी एडवाइजरी फर्म्स हैं जो आपको इस बारे में बता देंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, मैनेजमेंट देखें, वो किस बिजनेस में आगे प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ना जो न्यू एज बिजनेस, जैसे अभी मार्केट हम लोग के प्रोग्राम के पहले भी बात हो रहे थे, तो आपको ये थोड़ा सा अपना रिसर्च भी अच्छा करना होगा। और मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, ये सोच के ना आए कि आज बाजार में निवेश कर रहे हैं तो कल ही आप उसको अपना मुनाफा देख रहे हैं या नुकसान। थोड़ा अपना एक टाइम ड्यूरेशन तय कर लें। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलूंगा, खासकर रिटेल इन्वेस्टर की, कि क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर जनरली आप सुनते होंगे कि बाजार में पैसा नहीं बना पाता है, तो मुझे लगता है आप अपना प्रॉफिट के लेवल को भी एक माइंड में अपने तय कर लें जब आप, हाँ, ताकि आपको जब लगे कि अच्छा अब मेरे को ये प्रॉफिट लेवल मैंने अपने माइंड में इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में रखा था, मुझे अब ये मिल रहा है, तो मुझे अपना जो है वो उसको प्रॉफिट को ले लेना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट आपको ले लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, आप और लालच या मतलब और बेटर होता है क्या, अल्टीमेटली फिर वो जो है आप वो मौका चूक जाते हैं, और ये ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता है।
A corollary question to what Nikhil asked, time to, at 78,000, is it a good time to be a trader or an investor in the stocks?
See, trader obviously is, if you are a full time into markets, obviously then trader has then there are no levels for a trader. He obviously, because you buy and you sell it short in short durations. But if you want to be an investor, obviously I would always say do your research, do look at good companies. And I always believe at all levels there are opportunities, there are good companies, even when markets are doing well, even when markets are doing bad. Especially I feel when markets correct, I feel it is a very big opportunity for retail investors, for people like you and me, to come into markets and buy stocks at good levels and remain invested for a long time. Investor means you have, if you want to be an investor, you have to have some timeline, right, and especially a longer timeline. Don't look at short timelines.
Siddharth, अभी US की हम बात कर रहे हैं, तो मैं US मार्केट की अगर आपसे बात करूं तो 6 अरब डॉलर के शेयर्स बेचे गए पिछले सप्ताह में, जो कि माना जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी साप्ताहिक बिकवाली US में रही है, तो क्या इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है?
निखिल, मुझे नहीं लगता कि भारतीय बाजारों पे इतना ज्यादा, एक दिन का असर दिखेगा, दो दिन का असर रहेगा, मुझे नहीं लगता। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है बहुत अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन अगर किसी यूएस मार्केट का, हाँ ये जरूर है क्योंकि अब ग्लोबली वी आर ऑल्सो कपल्ड, मतलब वो बोलते ना कि हम डीकपल्ड नहीं है, तो अब दुनिया जो है हम लोग सब लोग एक दूसरे से जुड़ी हैं अर्थव्यवस्था, तो थोड़ा बहुत अगर यूएस में कुछ अभी, लेकिन इस तरह के फर्म संकेत नहीं, क्योंकि एक ये भी पिछले दो सप्ताह से ये बात आ रही है कि यूएस में शायद स्लो डाउन हो, प्लस वहां जो प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं कुछ एक उनकी जो नीतियां हैं रोज सरप्राइज करते हैं, डिसरप्शंस हैं, जैसे कल ही उन्होंने कुछ और अनाउंसमेंट किया वेनेजुएला के ऑयल मार्केट ऑयल को लेके कि अगर आप खरीदते हैं तो आप पे 25% की टैरिफ लगेगी, एक्स्ट्रा टैरिफ, तो कुछ उस तरह की जो अनिश्चितता है उनका भी असर यूएस की बाजार पे पड़ रहा है और उनका थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा लेकिन लॉन्ग टर्म होगा ये मुझे लगता नहीं।
इसमें एक चीज और बाहर निकल करके आ रही है खबर, ये है कि यूरोप में पिछले चार सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने $4 अरब का निवेश किया है जो 10 साल में अब तक का सबसे ज्यादा है। तो आपको ये लगता है कि निवेशक अब यूरोपीय बाजार में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि अभी तक ऐसा शायद नहीं देखा जाता था?
नहीं निखिल, मेरे को लगता है कि अगर यूरोपियन मार्केट देखे, जो विदेशी निवेशक होता है, जो FII होता है, उसका नेचर ऑफ, हमको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज देयर नेचर, हाउ डू दे, व्हाट डू दे लुक, उनका बेसिक नेचर इज टू मेक प्रॉफिट,
राइट?
तो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये, मैं इसको आपको इस तरह से भी बोलूंगा, जब हम लोग वित्त मंत्रालय में भी बात करते हैं कि FII इस बड़े तौर पे निकल रहे हैं, क्या आपको इससे चिंता लगती है, तो उनका उनका यही कहना है कि देखिए FII का काम है, वो इंडियन मार्केट क्यों आते हैं, दे लुक एट दैट दे वुड एंड अप मेकिंग मनी इन इंडियन मार्केट, सो दे कम टू इंडियन मार्केट, दे लुक एट आर
ह्यूज मार्केट्स,
या प्लस दे लुक एट योर मैक्रो, फॉर देम द बेसिक थिंग इज येस दे लुक दैट योर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर साउंड, और आप उनको पैसा निकालने भी तो दे रहे हैं, तो ये भी तो पॉजिटिव संकेत है ना कि आज वो आए हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट किया और आप ले जाने दे रहे हैं उनको पैसा, तो इसको इस तरह से ना देखें। और FII का मोटिव ही होता है प्रॉफिट मेकिंग, अगर आज उनको यूरोपीय बाजार ज्यादा आकर्षित कर रही है तो वो वहां चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े दिन और, उसके बाद वो बहुत दिन भारत से दूर रह नहीं पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले आज 12 पैसे कमजोर होकर 85.76 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 104.10 पर था।
All right, the Lok Sabha has passed the Finance Bill 2025. The bill seeks to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2025-26. Replying to the discussion on the bill, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said, the Finance Bill 2025 provides unprecedented tax relief to honour taxpayers and ease of doing business. She said, under the new tax regime, there will be zero income tax up to the income of 12 lakh rupees. Finance Minister Sitharaman announced that the new income tax bill is likely to be taken up for discussion in the next monsoon session. The minister said, as per the expectations of the people of the country and the goal of Viksit Bharat by 2047, the Union government has taken a lot of measures through this finance bill. Ms. Sitharaman said that the bill relating to customs aims to rationalize tariff structure to address duty inversion. She said that this will support manufacturing units, promote exports, facilitate trade and provide relief to the common people. So you agree with all this in the finance bill?
Yeah, absolutely, Lalima. And the important thing is, if you look at the current financial year, the financial year, because of the elections, got postponed. So
yes,
the budget came, or the budget came almost towards end of July, and by the time it got passed, it was almost 15th August. So we lost about 5 months. So the good thing is that obviously it is still March, and from April 1, the new financial year starts. The government starts its spending, the new rules kick in, especially the income tax relief, which has come in a big way, because that was something we were, there was a demand from the industry, common people, that there is some kind of slack in demand. So we need to push demand because we are seeing so much of uncertainty globally.
Yes.
So there was something that needs to be done globally. So that is why this kind of huge tax relief was given to people at large. Plus, we have also tried to give some kind of tax certainty, as well as also kind of eased rules, so that making India again an attractive destination, especially on the indirect taxes side, especially the tariff rationalization on the customs side, plus the income tax, certain rules have been made easy, so that you are able to make it conducive for people to do business in India. Besides that, there were several measures to promote MSMEs.
Yes.
Women entrepreneurs, plus government's own spending, capital expenditure, which is around 10 lakh crores in the current, for the next financial year, it is around 11 lakh crores, almost at the same levels. And this year we are doing about 10 lakh, and so next year is 11 lakh.
Uh-huh.
So all those things get kicked in from April 1. So, and I think so that with that, if you look at it at that perspective, it is obviously very important.
Right.
भारत और सिंगापुर ने हरित तथा डिजिटल नौ परिवहन गलियारे के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। सिंगापुर के समुद्री और पत्तन प्राधिकरण तथा भारत के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया है। वक्तव्य के अनुसार दोनों देश हरित और डिजिटल नौ परिवहन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आवश्यक विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करेंगे। सिद्धार्थ, अभी अप्रैल का महीना अब ज्यादा दूर नहीं, एक सप्ताह दूरी है और हमारे लिए खासतौर पर बड़ा ये इंपॉर्टेंट महीना रहेगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल में होने वाली नीति घोषणा और चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम भी घोषित होंगे जो कहीं ना कहीं बाजार की दिशा जरूर तय करेंगे। तो वैश्विक परिस्थितियों को अगर हम देखें, खासतौर पर यूएस में ट्रंप जी को लेकर के और हमारी जो परिस्थितियां हैं, तो दोनों को मिलाकर के आपको क्या लगता है कैसा माहौल बनने वाला है?
सी, अगर आप निखिल देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी की जहां तक बात है तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्हें देखनी होती है वो होती है महंगाई दर, इन्फ्लेशन, और उनका उनको ये उनका दायित्व है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ को किस तरह से मैनेज करें ताकि ग्रोथ इम्पैक्ट ना हो और इन्फ्लेशन भी जो है ऐसे लेवल्स पे ना हो जो उनको मैंडेट दिया है कि उसको नीचे 4-6% के कॉरिडोर में रखना है। तो मुझे लगता है अब इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया और एक रेट कट आरबीआई ने अभी किया ही था अपनी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में तकरीबन 25% का। मुझे लगता है वी आर नाउ क्लोज टू द नेक्स्ट रेट कट बिकॉज इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एंड अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, लिक्विडिटी हैज ऑल्सो ईज्ड। सो आई थिंक मतलब थिंग्स लुक वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ फॉर आरबीआई टू कट टू डू अ रेट कट।
इट्स ऑलवेज अ टाइटरोप वॉक टू बैलेंस इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इजंट इट सिद्धार्थ, फॉर द गवर्नमेंट?
इट इज अ टाइटरोप व्हेन इन्फ्लेशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। So I think and if inflation is under control, obviously RBI, the job of Reserve Bank or the Monetary Authority gets easier because then they can obviously move towards a low interest regime because low interest rate would also facilitate business. People will be able to access credit at lower at low rate of interest, which in turn would they will be able to invest and so forth and so on.
Right. All right. The Labour and Employment Ministry, in collaboration with the States and International Labour Organization, ILO, has begun the social protection data pooling exercise in the country. This exercise aims to obtain a holistic picture of social protection coverage in India. In the first phase, the ministry has identified 10 states, including Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Odisha for data consolidation at the central level. The ministry in a statement said that over 200 crore records were processed to identify unique beneficiaries by utilizing encrypted Aadhaar as a unique identifier across 34 major central schemes such as MG Narega, EPFO, ESIC, APY and PM Poshan. It also stated that nearly 65% of India's population is covered by at least one social protection benefit, both cash and in kind, with 48.8% receiving cash benefits. This data pooling exercise also aims to facilitate the central government, states and union territories in optimizing welfare spending and moving closer to sustainable financing of social protection. It also seeks to help the states identify unique beneficiaries under state-specific social protection schemes.
अमेरिका के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा जो भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता करेगा। ये यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना के संदर्भ में हो रही है जिसमें वे विभिन्न देशों पर प्रतिकूल शुल्क लगाने की बात कर रहे हैं। इनमें भारत भी शामिल है। ये यात्रा अमरीकी व्यापार अधिकारियों की भारतीय निर्यातकों के लिए चिंताएं बढ़ाने वाले प्रस्तावित शुल्क के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाती है जिसके 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। भारत और अमरीका के बीच शुल्क संबंधी मुद्दों को हल करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता हो रही है। भारत को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन उसे प्रस्तावित प्रतिकूल शुल्कों से छूट दे सकता है। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है इस पहल से?
नहीं निखिल, देखिए, अगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उसके बाद पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की, उनके साथ बहुत डिटेल में बातचीत हुई इस मुद्दे पे। उसके बाद हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक लंबा दौरा किया अमेरिका में, वहां के जो उनके ट्रेड से जुड़े हुए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनका काफ़ी इंटेंस और एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुआ और उसी का मुझे लगता है उसी का एक्सटेंशन है ये जो अमेरिकी डेलीगेशन अब आ रहा है। और मुझे लगता है कि इसके जो है इससे मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमको मिलेगी और मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो दोनों के मतलब म्यूचुअली बेनिफिट के लिए होगा, और ये जरूर है कि, और आज हमने सरकार ने इस बात को रिएट्रेट किया है जब उन्होंने पार्लियामेंट में एक अपने जो रिटन रिप्लाई दिया है कॉमर्स मिनिस्टर ने, उन्होंने ये बोला है कि वी आर वर्किंग फॉर अ सोल्यूशन वेयर वी आर लुकिंग टू ब्रिंग डाउन टैरिफ्स, हम अपनी और ज़्यादा मार्केट एक्सेस, और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो कंप्लायंसेज हैं, उनको भी कैसे घटाएं और दोनों देश के बीच में व्यापार जो है कैसे बेहतर ढंग से किया जाए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे लिए अमेरिका सबसे बड़ी बाजार है, हमारा अमेरिका के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो तकरीबन $46 बिलियन है। तो ये बिल्कुल बात तय है कि मतलब हम जो वहां से जो बात, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिकी उत्पादों पर, तो शायद कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक की बात है। और तो इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, थोड़े डिस्ट्रप्शन होंगे, और ऐसा तो होगा नहीं कि जहां पे टैरिफ घटेगी वहां पहले दिन से कोई बाजार एकदम फ्लडेड हो जाएंगे। तो ठीक, मुझे लगता है हर ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिस्रप्शन होता है, बट देन थिंग्स गेट नॉर्मलाइज।
बट सिद्धार्थ, कंसिडरिंग दैट वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम हियर, आई थिंक आई बिलीव 1/3 ऑफ द फार्मा प्रोडक्ट्स और ड्रग्स व्हिच आर देयर इन द यूएस कम go from India, and also we export gems and jewelry, and not to forget we export a lot of IT personnel. Can US do without India? Can they rub us the wrong way?
No, so that is why he's saying, no, that is why he's been saying that I love India, my personal chemistry with Prime Minister Narendra Modi is great, but the only thing is that which I don't like about India is the high tariffs on on products, on US products, and so he's looking for greater access in terms of agriculture, I think. So that those are areas where we will work around with them, because otherwise if he goes ahead with his reciprocal tariff, I think are three areas where we should be concerned, or we are concerned, is agriculture, pharma, as you said, so, and gems and jewelry. Otherwise I think textiles, petroleum are areas where we can manage.
एशिया के प्रमुख पांच शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.4% के नुकसान में था। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.6% की सुस्ती देखी गई, और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज करीब करीब सपाट रहते हुए बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और जापान का निक्केई 0.46% की उछाल के साथ बंद करे। बात करें यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की, तो अंतिम समाचार मिलने तक तीनों प्रमुख सूचकांक आज लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस के कैक ने 1.3% से अधिक बढ़त बना रखी थी, और जर्मनी का डेक्स 1.2% ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा था। वहीं लंदन का फुटसी 0.7% के लाभ में था।
US stocks rallied on Monday, led by technology shares, following signs that the US President Donald Trump administration might take a more measured approach on tariffs against its trading partners. Donald Trump said that he might give a lot of countries break on tariffs, but provided no details. The Nasdaq composite surged over 2.2%. S&P 500 rose sharply over 1.7%, registering its highest gains in over 2 weeks, and the Dow Jones Industrial Average ended over 1.4% up. And a look at the oil prices now. Well, oil prices witnessed uptick today on expectations of tightening global supply after the US threatened tariffs on countries that buy Venezuelan crude oil and gas. Brent crude was trading over 0.7% up at $73.54 per barrel. WTI crude was also trading over 0.7% up at $69.64 per barrel when reports last came in.
सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.48% बढ़कर 88,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.50% बढ़कर 99,280 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.48% बढ़कर 87,699 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मई 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले चांदी का वायदा मूल्य 1.60% बढ़कर 99,049 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। सिद्धार्थ, बहुत कम शब्दों में मेटल सेक्टर से आपको क्या उम्मीदें नजर आती हैं ओवरऑल?
नहीं, अगर निखिल, जब तक आप देखेंगे इस तरह की अनिश्चितता बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइसेस में जो तेजी है वो बनी रहेगी।
और चांदी के बारे में आप क्या कहेंगे?
दोनों गोल्ड और अब तो सिल्वर को लेके भी लोगों के मन में एक अट्रैक्शन है, तो लोग सिल्वर भी खरीद रहे हैं, बिकॉज गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है।
सिल्वर इज द न्यू गोल्ड।
Yes. Or more accessible. People can buy.
And India's passion for gold never ends, come what may. All right, friends. Before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end nearly flat with a positive bias. Sensex closes above 78,000. Nifty ends at 23,669. Lok Sabha passes the Finance Bill 2025. Finance Minister Nirmala Sitharaman says bill provides tax relief to honor taxpayers and aims to enhance ease of doing business. And global crude oil prices register uptick. Brent crude trades at $73.54 per barrel. On that note, it's time for us to say bye-bye. It's myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, and our expert, Siddharth Singh, to bid adieu. Namaskar.
Namaskar.